ओम शांति। अव्यक्त बुकिंग 5 दिसंबर 2016। कल 20 प्रश्न हो गए थे, अभी आगे 21वां प्रश्न। हर एक का मन कौन सी खुशियां मना रहा है? संगम युग की खुशियां मना रहा है। और मुरली में उत्तर है अव्यक्त मिलन की खुशियां। तो हर एक का मन कौन सी खुशियां मना रहा है? पांडव भवन मधुबन में आने की खुशियां मना रहा है, अपनी नसीब की, अपनी तकदीर की, भाग्य की, नसीब की, तकदीर की, किस्मत की, जो नहीं सोचा था वो भी मिल गया, उसकी खुशियां मना रहा है। और इस महफिल की खुशियां मना रहा है, सच्चे परिवार की खुशी मना रहा है, ब्रह्मा भोजन, प्रभु मिलन, अतीन्द्रिय सुख, पवित्र जीवन की खुशियां, ज्ञान चर्चा की खुशी और सुनने की खुशी और सुनाने की खुशी। आज की मुरली में एक वाक्य है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले क्या साकार मुरली आज सुबह की, छिप नहीं सकते। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले छिप नहीं सकते। सेवा की खुशी, ज्ञान की खुशी, योग की खुशी, धारणाओं की खुशी और सेवाओं की खुशी। इस तरह से चार भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। फिर उसके हाँ धारणाओं में, फिर धारणाओं की खुशी में सब आ जाएगी, सारी धारणा। दिनचर्या में टोली, ब्रह्मा भोजन और बाबा के साथ की खुशी, सत्संग, सत का संग, और सभी संग डुबोने वाला है, तुम्हारा और किसी से, हमारा और किसी से आज की मुरली में तैलुक नहीं। हमें सत्व प्रधान बनना है और किसी से कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबंध नहीं। तो प्रश्न है, हमारे हरेक का मन कौन सी खुशियां मना रहा है? तो बाबा की चिटचट में खुशी, बाबा की वाणी सुनने में खुशी, संगठन की खुशी, संगठन, परिवार, परिवार को मिलने की खुशी, परमात्मा की गोद में ही बैठ गए उसकी खुशी। हिसाब किताब चुपटू होने के बाद खुशी है, अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताएं। ये तो सार्वजनिक उत्तर थे, व्यक्तिगत उत्तर, जब विशेष मदद का अनुभव हो तब जीवन को अर्पण कर दिया, ये तो बड़ी खुशी है, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत खुशी। असंभव बात संभव हो जाए, ऐसा संस्कार जो छूट नहीं रहा था और अचानक वो छूट गया, ऐसी तीन या चार धारणाएं जो कभी एक होती थी, कभी दो होती थी, कभी तीन होती थी, कभी चार होती थी, एक दिन आया कि चारों ही एक साथ हो गई, चार या पांच, कोई भी ऐसी धारणा है, जैसे कि अमृत वेला भी शक्तिशाली हो गया, मुरली भी बहुत शक्तिशाली सुनी पढ़ी, चिंतन किया, वर्णन किया, उसके बाद में भोजन भी याद में खा लिया, उसके बाद में नींद भी ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, पर्याप्त, और साउंड स्लीप, ऐसी तीन चार चीजें एक ही दिन में एक साथ हो गई, वही साधना है। एक साथ सारी धारणा जिस दिन हो जाए, एक अद्भुत सी खुशी होती है, जिस दिन ज्ञान भी सुनाया, जिस दिन ज्ञान भी सुना, धारणाएं सारी की अमृत, और कनेक्शन बहुत ज्यादा रहा, अव्यक्त स्मृति ज्यादा रही। स्मृति ही सामर्थ्य है, स्मृति ही शक्ति है, सबका आधार स्मृति है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, सबका आधार स्मृति है। स्मृति में ही सामर्थ्य है, शक्ति है। तो जिस दिन हम स्मृति स्वरूप रहे, याद स्वरूप, स्मृति स्वरूप, दिलो दिमाग एक पर स्थिर, उस दिन कुछ और खुशी होती है। और व्यक्तिगत खुशी, मदद, और कोई भी टारगेट लिया है और उसको पूरा किया है, बाबा ने बहुत मदद की और समय पर पूरा किया है, टाइम, और टाइम से कभी कभी पहले किया तो उसकी और ज्यादा खुशी, टाइम से भी पहले कर दिया, उसकी क्या सफल हो जाता है, सफलता मिल जाती है, तो कार्य में सफलता। हाँ, योग के प्रयोग, संकल्प शक्ति के प्रयोग, पिछले संडे की मुरली, संकल्प शक्ति पर अटेंशन देना है, एक संकल्प शक्ति के प्रयोग करना है, और क्या करना है, संकल्प शक्ति का जमा करना है, बढ़ाना है, ये तीन चीजें बाबा ने कही थी। तो एक्सपेरिमेंटिंग विद द पावर ऑफ थॉट्स, संकल्प करना और उसका परिणाम देख, संकल्प करते जैसे पुरानी हिस्ट्री और सृष्टि में, क्या पुराने हिस्ट्री और सृष्टि में पक्षियों द्वारा संदेश दिए जाते थे, तो महारथियों की सेवा कौन सी है अभी, संकल्प शक्ति से, इधर संकल्प का बटन ऑन किया और उधर संकल्प पहुंचे। हाँ, तो संकल्पों के प्रयोग, इसके लिए एक एक संकल्प पर अटेंशन, एक एक संकल्प हमारा शक्तिशाली हो। सारे दिन भर जो विचार चल रहे हैं, किस तरह के विचार है, कौन सा वो समय है जब संकल्प थोड़े डाउन हो जाते हैं, उस समय को शक्तिशाली बना देना। सारा खेल संकल्पों का है, स्मृति विस्मृति, स्मृति विस्मृति, तो संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, महान बना देना। जब सारे ही दिन भर श्रेष्ठ महान संकल्प चलते हैं, कम से कम निगेटिव और कम से कम व्यर्थ, उस दिन क्या होता है, मन को एक अलौकिक खुशी का अनुभव होता है। तो हर एक का मन कौन सी खुशियां मना रहा है, और व्यक्तिगत स्तर पर हर एक का मन, मधुबन में आने जो कहा, बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारी परिस्थितियां थी, परंतु फिर भी पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ी खुशी है। सगाई हो गई थी बाबा ने, किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारी सगाई हो गई है, तो उसने, बाबा ने उसको उत्तर दिया कि क्या करो, उसको समझा दो, तुम पति हो ना, तो उसको तो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी कि हम पवित्र रहेंगे, क्योंकि पति परमेश्वर जैसा होता है, तुम तो शादी करो ही नहीं, जिसकी हो चुकी है उसके लिए था वो। अभी पूरे हुए नहीं, अभी तक ना चालू है अभी 4 साल। विशेष पालना, आरतियों से अलग से विशेष पालना, और अनुभव सुनते हैं तब, विशेष कृपा, दृष्टि, अनुकंपा, तब खुशी। बाबा ने एकदम बिठा दिया, और माता जी सारी दुनिया से समेट के यहाँ रख दिया। हाँ, ये एक अलग प्रकार की खुशी है, जिसमें कर्म भी हो रहा है और योग भी हो रहा है, निरंतर योग, उसमें अंतर ना हो, योग में अंतर ना हो, ये विधि है किसकी, लास्ट तो फास्ट जाने की, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, लास्ट को फास्ट जाने की विधि है निरंतर याद, याद में अंतर ना हो, कर्मयोग की स्थिति हो, कर्म करते हुए भी याद हो, कर्मयोगी होंगे तब कर्मातीत बनेंगे। हाँ, एक महीने वाला 30 साल से भी आगे जा सकता है। सारा आधार याद पर है। को लेके आना और बिना विघ्न माताओं को ले जाना। हाँ, एक भी माता कहीं गुम नहीं हुई, जितनी गिन के लाई थी बस पूरी उतनी ही है। तो उत्तर तो कई सारे दिए जा सकते हैं। उत्तर देने से ज्यादा मन में चिंतन करने की आवश्यकता है और उस खुशी में रहने की आवश्यकता है। प्रश्न तो हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं ये कोई फाइनल नहीं है, ये केवल एक स्टिमुलस है, एक केवल आगे क्या करना है उसके लिए। सारा जो करना है वो खुद ही करना है, अकेले में करना है, मन ही मन करना है। तो हर एक का मन कौन सी खुशियां मना रहा है, स्वयं स्वयं से पूछना कि मेरे मन में कौन सी खुशियां है। हद की या बेहद की। अगला प्रश्न है, यह आंखें हमारे पास न हो तो सेवा और याद कैसे करेंगे। याद तो कर ही सकते हैं क्योंकि याद का संबंध ज्यादा आंखों से नहीं है। आंखें न होने पर मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं, और आजकल की दुनिया में जो भी ब्लाइंड होते हैं, दृष्टिबाधित, वो तो सर्व प्रकार की सेवा करते हैं, सारे प्रकार की सर्विसेज करते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आज के युग में ब्लाइंड कर नहीं सकते। हाँ, बहुत सारा कुछ कर सकते, उनके सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं हर चीज के बारे में। संसार भर में ऐसे कितने ही लोग, इसकी एक दो बार यहाँ शायद हमने चर्चा भी की है सुबह की क्लास में। संसार में एक उदाहरण हमने दिया था, महाराष्ट्र के एक संत है विदर्भ के, गुलाब महाराज, उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है। वो जन्मांध थे बचपन से, बॉर्न ब्लाइंड, और उनको तो दिखता ही नहीं था, परंतु कितनी सारी किताबें, कितने सारा तत्व ज्ञान, 34 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। उतनी छोटी सी आयु में इतना सारा कार्य करके गए। हाँ, जो भी है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जॉन मिल्टन गॉट ब्लाइंड, उसकी जो पोएम्स है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ऐसे कितने सारे ऑथर्स संसार में हुए हैं। हाँ, रविंद्र जैन, और एक दूसरी भी, वो भरतनाट्यम करने वाली डांसर कौन एक है ना बहन, एक और एक बहन, ऐसे कितने सारे लोग हैं, लिस्ट ये है बहुत बड़ी। कौन सा, स्टीफन हॉकिंग, वो तो ब्लाइंड नहीं है, वो उसको दूसरी प्रॉब्लम है बहुत सारी। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, अभी नहीं निकली, पहले से निकली हुई है, वो तो किताब निकली ब्रेल लिखी। तो ये आंखें हमारे पास ना हो तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको तो और ही थोड़ा ज्यादा ही पता रहता है एक्चुअली। महाभारत में दिखा है ना, धृतराष्ट्र जो होता है, वो जैसे ही कोई आता है उसे पता चल जाता है कौन आया है। हाँ, कौन आया है उसको पता चल जाता है। हाँ, बिना बोले बस कोई एंट्री किया और उसको पता चल जाता है ये है। शकुनी उसको कहता भी है ना एक बार, कि जैसे कोई आता है तो उसकी आहट तुम सुन ले होते, समय की आहट कब सुनोगे। राज्य हाथों से निकला जा रहा है, पदचाप कब सुनोगे समय की। बाकी सबकी तो सुन लेते हो, ये सुनो अब तो। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। शब्द बेदी बांध, हाँ ये कहावत है ना उसके चौपाई तो। वो पृथ्वीराज रासो में आता है, ये पृथ्वीराज रासो करके किताब है। हाँ चांद बधाई विदाई। तो आंखें, एक होता है आंखें न होना, एक दूसरा होता है आंखों पर पट्टी बांधना और फिर अभ्यास करना आवाजों को सुनने की। ये भी एक क्लायर ऑडियंस और क्लायर वॉइंस जो कला होती है टेलीपैथी में, उसमें टेलीपैथी जिनको सिखाया जाता है इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आंखें बंद करना और आवाजों को सुनना, जो भी आवाजें आ रही है, सेंसेस को शार्प करने के लिए केवल आवाजों पर फोकस। जैसे कोई सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है तो एक भी आवाज ना छूटे, सारी आवाजों को सुनना। और एकाग्रता के लिए भी अभ्यास सिखाया जाता है और इससे हमारी वो जो हियरिंग जो है बहुत शार्प होती है। पंछियों की आवाज, गाड़ी जा रही है उसकी आवाज, हर चीज की आवाज सुनना, कुछ भी ना छूटे। कई सारी जगह पर तो ये मेडिटेशन टेक्निक है, ऐसी मेडिटेशन सिखाया जाता है, केवल सुनना, सुनते 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 एकाग्र हो जाते हैं। तो प्रश्न है, ये आंखें हमारे पास न हो, हाँ वो भी एक दूसरी टेक्निक है, पट्टी बांधकर भी पढ़ लेना, वो भी एक है। एक को तो बस ऐसे ऐसे उंगली घुमा देती थी और जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़ लेती थी। तो ये सब साइकिक पावर्स इसको कहा जाता है, इसको डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग सिखाई जाती है। तो उनके लिए आज के युग में तो मुझे नहीं लगता कुछ भी असंभव है, सब करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बात चल रही है तो सेवा और याद कैसे करें। तो याद के लिए तो आंखों की, स्थूल आंखों की इतनी आवश्यकता ही नहीं, परंतु हाँ सेवाओं के लिए इस यज्ञ में भी कोई है ऐसा दृष्टि बाधित जो सेवाएं कर रहे हैं? कौन? अच्छा, तो इसका हम और विस्तार कर सकते हैं। अगला, अव्यक्त दिन दिल को बहुत प्यारा क्यों लगता है? बाबा जब आते हैं वो दिन ले लो, बाबा को क्यों प्यारा लगता है? ऐसा ही दूसरा एक प्रश्न है, ब्राह्मण परिवार में मिलन डे का क्या महत्व है? उस दिन तो पापा एक्स्ट्रा चीजें लेके आते, गिफ्ट। एक तो ये ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, सहज होता है। उस दिन वातावरण बना हुआ होता है, सबका एक ही संकल्प होता है, बाबा से मिलने जाना है। कहाँ जा रहे? बाबा मुरलियों में आया था ना, कहाँ जा रहे हो? तो बाबा से मिलने जा रहे हैं, चाहे कैसे भी मिले पर कहते क्या है, बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा से मिल के आए हैं। साइलेंस रहता है और पावरफुल वाइब्रेशन, संगठन का बल होता है, परिवार की फीलिंग होती है उस दिन, बहुत ज्यादा फीलिंग होती है। शांतिवन में केवल वैसे ही घूमो और इस भाव से देखो कि इतना बड़ा परिवार हो गया, कैसे हो गया, ये कैसे था और क्या हो गया, कितनी वृद्धि हो गई। तो ये देखकर भी खुशी होती है और ये देखकर भी कितने भाग्यशाली है सब, हम तो थे ही जब हमको चुना गया, परंतु ये सारे भी देखो कितने भाग्यशाली है जो इतने सारे यहाँ पहुंच गए। तो दूसरों के भाग्य को देखकर खुशी, परिवार का, संगठन का प्यार वो देखकर खुशी उस दिन। और हाँ वो सारी बातें आ गई, नहीं उस दिन का, दिन भर का, दिन दिन का महत्व। हाँ वो भी कहते हैं, उनको पता कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में ऐसा बहुत है, कई सारे लोग हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, पर कहते हैं आज नीचे नहीं जा रहे हो, आज बाबा का दिन है, खुद ही हमको रिमाइंड कराते हैं। तो हाँ उस दिन ना अगर किसी से उस दिन निगेटिव नहीं हुआ, थोड़े झगड़े कम होंगे, आपस में टकराव कम होगा, क्योंकि किसको अपना शाम का मिलन खराब करना है। ठीक है भाई छोड़ो, अगर हाँ कोई दूसरा दिन हो तो थोड़ा लड़ाई वगैरह कर सकता है, हल्का रहता है मन, उस दिन का टैक्स नहीं लेते हैं। अच्छा ये स्थूल हो गया, और सारे दिन भर एक संकल्प रहता है कि नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, एक संकल्प रहता है मन में कि मिलने जाना है। हाँ मिल वेस्ट नहीं करना चाहते, जो इधर उधर वेस्ट करते बाकी दिनों में उस दिन उतना वेस्ट नहीं होता है। और एक्सपेक्टेशन किससे? बाबा से। हाँ और मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। हाँ इंतजार रहता है, अपलक लोचन सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। और सब अपने अपनी स्थिति पर अटेंशन दिए हुए रहते हैं। और खीर। अच्छा और जो ग्रुप्स आते हैं, ये तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं, परंतु नीचे जो अलग अलग सेंटरों से या देश विदेश से, उनको अपनी एक खुशी रहती है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से मिलने की खुशी। बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, तो वो देखकर चाहे बात करें या ना करें, देखकर खुशी होती है। मंडे अच्छा आना और जाना उसी दिन, रात गुजर गई, अंधकार समाप्त। हाँ संगठन में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, संगठन के बीच कैसे रहना है, कैसे चलना है, कमरे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, देखने से सीखते हैं, नियम मर्यादाओं का पता चलता है, जो पहले पता ही नहीं था, उधर सेंटर में किसी ने बताया नहीं था, वो यहाँ आने के बाद बहुत सारी बातें क्लियर होती है। और कुछ कुछ अनरिटन मैनर्स, अनरिटन इटिकेट्स, अलिखित नियम जो है उनका पता चलता है, जो कहीं किसी ने बताया भी नहीं थे ना कहीं लिखे थे, वो यहाँ आने के बाद ही पता चले, ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है। हाँ उसमें भी बहुत सारा देखने से ही कितना सारा सीखते हैं, जैसे दिन मतलब वो जो साइलेंस, इतने सारे लोग आए हुए हैं, इतने हजारों लोगों का भोजन बन रहा है पर पिन ड्रॉप साइलेंस, कितनी सीखने जैसी बात है, इतने लोगों का भोजन बन रहा है और कोई आवाज ही नहीं, कितना इसमें है। अगर ऐसा ही किसी कई सारे साधु संन्यासी अपने आश्रमों का अनुभव बताते ना, हमारे आश्रम में अचानक अगर 500 लोग आ गए तो हलचल हो जाती है, यहाँ तो 500 के हजार क्या, जितने आए उससे दो तीन कितने सारे ज्यादा हजार आ गए तो भी कुछ नहीं। फिक्स्ड है हर चीज का, तो यहाँ सारी सुविधा का हो, अगर चलो कोई असुविधा भी हो परंतु उसमें भी खुशी, उसमें भी असंतुष्टता, टेंट में सोते हैं पर फिर उसमें भी असंतुष्टता, हाँ वो सेंट बन जाते हैं बाद में। तो इस परिवार में इस दिन का विशेष महत्व है, बाबा की अव्यक्त जो भी डेट से आने की, उस हर एक दिन का विशेष महत्व है, चाहे 18 जनवरी होली, चाहे शिवरात्रि, चाहे न्यू ईयर, जो भी है इस तरह के। अभी दूसरा प्रश्न है, जो साकार में मिलते थे उन्हें अभी का अव्यक्त मिलन कैसे अनुभव होता होगा? चिमन भाई जी, जो साकार में मिलते थे उन्हें अभी का अव्यक्त मिलन कैसे अनुभव होता है? वो दिन याद आते, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, बाबा तब भी साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं, तो वो भी ठीक अच्छे थे और ये भी अच्छे हैं। और यादें आती है, और तब और ज्यादा याद नहीं। प्रश्न है कि इनको क्या अनुभव होता है। हाँ, उनको लगता है वो देखो वो दिन कैसे थे जब हम कैसे मिलते थे, एक एक से बाबा मिलते थे, और कहा ये कि अभी तो दिखाई भी नहीं देते हैं दूर से, ऐसे होता है। और वो दिन कैसे थे और ये दिन कैसे, वो दिन में कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा, नहीं ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा इतने आएंगे। उनको तो लगता था बस ये इतने ही है जितने बैठते थे, बस ये ऐसा हो जाएगा, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। दादी जानकी उस दिन कह रही थी ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग मुझे दादी कहेंगे, कह रहे थे ना उस दिन। मिलना होगा, ऐसा कोई पार्ट भी होगा, ये सब उनके लिए आश्चर्य है सारा, ये सब कैसे हो गया। तो जो साकार में मिलते थे उन्हें अभी का अव्यक्त मिलन कैसे अनुभव होता है। अभी भी खुशी तो होती है, अभी शायद और एक दूसरे रीति से खुशी होती कि कितनी वृद्धि हो गई है, कितना अच्छा हो गया है, कितना इन सब ने भी जो भाग्य पा लिया, हमने भी क्या भाग्य पाया। अगले संडे मूर्ति में है, दीदी से बाबा बात कर, इतनी वृद्धि हो गई, एक दिन तो अभी तो कुछ हजार आए हैं, एक दिन तो भक्त भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि भक्त देखेंगे इष्ट के पीछे तो आएंगे ना, वो चात्रक होते हैं भक्त, तो भक्त भी आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ ब्राह्मणों के लिए अभी जगह नहीं, तो अभी ब्राह्मण इतने सारे आ गए। आबू रोड से लाइन लगेगी, लग चुकी है कब से, ये जो जो भविष्यवाणियां बाबा ने की थी सारी की सारी पूर्ण हुई है, कुछ अभी बाकी है एब्सोल्यूट कंप्लीट प्रत्यक्षता वाली, तो बाकी बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी हो गई है, जो जो भविष्यवाणी पेशन गोई, हाँ विक्टोरिया ग्राउंड से लेके झंडा ले रहा है अभी, तो सारी बाबा ने गली गली में सेंटर होगा, कितने सेंटर है आज किसने कभी सोचा होगा, एक एक शहर में कितने 15-15, 20-20 सेंटर, मुंबई में कितने सारे सेंटर होंगे, एक 100 से करीब, वो भी प्रत्यक्ष बाबा ने जो कहा था वो भी हो रहा है। और एक समय आएगा जहाँ पत्थर फेंकोगे सेंटर तो उनको ये सब देखकर भी खुशी होती होगी, देखो कैसा वो था, कैसे वो दिन थे कि लोग दरवाजा बंद कर देते, ब्रह्मा कुमारी सफेद साड़ी देखा दरवाजा बंद, और अभी आओ हमारे पास प्रोग्राम, आओ इधर ये कोर्स कराओ, वो मैनेजमेंट कोर्स कराओ, हमारे पास हम कहते अभी बताएंगे आपको, डेट नहीं है अभी, डेट देंगे आपको, हाँ सब कुछ देने को तैयार है। तो ये सब देखकर भी जिन्होंने वो मिलन देखा था, ये मिलन देखकर उनको भी और भी एक अलौकिक खुशी होती है। मिलन डे पर सभी की दिल तस्वीर के अंदर ऑटोमेटिक क्या याद आता है, मुरली में है ये अव्यक्त मिलन, ये लगभग जैसे सिमिलर उत्तर हो सकते हैं इसके, दिल जुड़ गया, बेचारे देख नहीं सकते वो बाबा को कैसे देखे, जो देख नहीं सकते वो कैसे देखेंगे, तीसरी आंख से दिखाएगा वो मन की आंखों से देखे। एक बार सूरज भाई को किसी ने प्रश्न पूछा था, जो देख नहीं सकता सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, उसको ज्ञान में कैसे लाए हाँ। देख सकते थे ना, हाँ तो हाँ। वो तो देखो आंखों से और ये चीजों से कोई उसका संबंध नहीं है, संस्कार है ना आत्मा में, जो देवकुल की आत्मा है वो चाहे कुछ हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, संस्कार यहाँ पर है, यहाँ को जागृत कर दो तो आ जाएगी ज्ञान। तो प्रश्न था कि जो देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उनका क्या करे? तीनों ही है, उनको जो करना है बाबा ही करेगा। क्यों नहीं होंगे? जिसने जिसको सुनने नहीं आता है ना वो बोल भी नहीं सकता है। नहीं क्यों नहीं, अगर वो ट्रॉमेटिक कॉज भी हो सकता है कोई, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकते है, कोई दूसरे कारण से हो सकता है, ऐसे नहीं कि पहले सुनाई देता था अब सुनाई नहीं दे रहे, कान में इन्फेक्शन हो गया, आंखों में कोई चोट लग गई, ब्लाइंड हो गए, ट्रॉमेटिक इंजुरी तो हो गए ना वो। तो वो तो है, वाइब्रेशंस तो है ही, वाइब्रेशन से तो सब कुछ हो सकता है, संकल्प से संकल्प टच करेंगे, उनकी आत्मा को जगाना है ये तो हो ही सकता है, चाहे वो व्यक्त करे भी ना कि मुझे परिचय मिल गया है, असंभव कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ वही टच, यस। तो वो बाबा को कैसे देखे, अब ये जो है ऐसे वो बाबा को कैसे देखे, मन की आंखों से और मेरे चेहरे से, मतलब मैं कौन, उनको दिखाई नहीं देता ना। वो प्यार से उनको बाबा दिखाई देगा, हाँ चलो ये ठीक है, पालना प्यार, अभी उसके बाद ये मुरली यहाँ पूरी होती है, अभी अगली जो मुरली है जिसकी बाबा ने चर्चा की है वो 21 जनवरी 1969 की मुरली है, सभी मुरलियों में बहुत महत्वपूर्ण मुरली है, ये दो मुरलियां हैं, पार्ट वन पार्ट टू, सुबह संदेश शाम को मुरली, 5 पेज की मुरली है टोटल शाम की। हाँ इसमें पूरा मतलब जो वातावरण था उसमें जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए हैं, अभी होगा क्या, चारों उधर हलचल है, यज्ञ का क्या होगा, बाकी धर्म बाकी संस्थाओं के संस्थापक जब गए सारी संस्थाएं नीचे आ गई, इसका क्या होगा, और कई लोगों का इतना प्यार था, कई लोगों की अर्जियां डाल रहे कि बाबा वापस भेजो, कई लोग कह रहे हैं कि अभी संस्था कैसे चलेगी, कई लोगों को इसकी चिंता हो रही कि लोगों को जवाब क्या देंगे, हम तो कहते थे ब्रह्मा 100 साल जिएगा, ये थोड़ा पहले ही चले गए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न कितनों के मन में हलचल। तो उस समय ये मुरली चली, तो सबसे पहली चली, पहले संदेश, संदेशी बाबा के पास पहुंचे गुलजार दादी, और फिर क्या कहा बाबा को, बिना बताए क्यों चले, तो संदेशी ने बाबा से बात की कि ऐसा क्यों हुआ, बाबा ने उसमें एक दृश्य दिखाया है, उसमें इतना वर्णन नहीं है पर एक ही दृश्य, एक ही डाली दिखाई, डाली पर क्या लिखा था, भावी ताले ना ही टले, ये नहीं चल सकता जो हुआ है। तो संदेशी बाबा के पास गई, बाबा से बातें की और बाबा ने एक दृश्य दिखा दिया बस, और संदेशी फिर वापस आई और बाबा ने फिर कहा दो शब्द, दो शब्दों की सौगात, कौन सी, अटल और अखंड, और यहाँ पर ये मुरली, ये संदेश यहाँ पूरा होता है। मेन मुरली जो चल रही है वो शाम को चली, शाम को जो मुरली चली उसमें अभी बहुत सारी बातें, इतने सारे टॉपिक्स उसमें डिस्कस किए गए हैं, ढेर सारे टॉपिक्स, अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से। सबसे पहला चलो मुरली प्रश्न उत्तर के हिसाब से जाते हैं, तो 29th क्वेश्चन है, भावी टाले ना ही टले, एक भाई को जिसको ये होमवर्क दिया था वो चिट पेपर पर पूरा उसने अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छी बात है, पॉइंट्स शायद चला गया वो। तो इस ड्रामा में जो होना है वो होगा, चल नहीं सकता, फिक्स्ड है, जो कल्प पहले हुआ था वो होगा, कुछ बदल नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी पॉइंट इससे संबंधित है, जो भावी है उसको होना ही है, नथिंग न्यू। ड्रामा की जितनी पॉइंट है, जो हो रहा है वही सत्य है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, हर एक निर्दोष है, न्यायकारी कल्याणकारी है ड्रामा, विविधतापूर्ण है ड्रामा, ड्रामा में कहीं कोई गलती नहीं है। ड्रामा भगवान को पसंद है तो हमें भी पसंद होना चाहिए, ड्रामा कल्याणकारी है, कहीं पर भी अकल्याण हो नहीं सकता इस ड्रामा में। जो हो रहा है उसमें शुभ है, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है उससे अच्छा और जो होगा सबसे अच्छा। तो ड्रामा में जो भी है सब अच्छा है, और ड्रामा की जो भावी है वो कोई टाल नहीं सकता। फिर बाबा ने यहां पर और बाबा, हाँ बीच में बाबा बाबा की बदरामनी हुई, जिसमें बाबा ने कहा है बाबा सबको आकारी बनाने के लिए कायम है, और कहा कि बाप दादा और कल्याण और कोई शब्द नहीं, हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण। फिर इस संदेश में बाबा ने कौन से दो शब्दों की सौगात दी, अटल और अखंड। बाबा ने यज्ञ के लिए कौन कौन से डायरेक्शन दिए, 15-20 डायरेक्शन है टोटल, बोलो कमलेश भाई क्या क्या डायरेक्शन है? नहीं वो रख दो, वो पेपर अंदर, वैसे ही बताओ क्या क्या डायरेक्शन दिए। जैसा यज्ञ पहले चलता था वैसा ही चलेगा, जैसे निमित्त ब्रह्मा था अंत तक निमित्त ब्रह्मा ही रहेगा, पत्रों की लेन देन होती रहेगी, मुख्य पोस्ट मधुबन से ही सेवा केंद्रों पर जाएगी, मुरली का रिवीजन होगा, तुमको मुरली कल की भी याद नहीं होगी, मुरली तो सारी सुना दी पर कल क्या सुनाया वो भी नहीं याद होगी, इसके लिए मुरली की रिवीजन होगा। और मुरली जो है वो केवल ब्रह्मा के तन द्वारा चली, उसी को मुरली कहा जाएगा, संदेशियों द्वारा जो मुरली है वो मुरली नहीं है, क्योंकि बाप दादा उसमें जादू नहीं है, मुरली की जादू केवल जो बाबा की मुरली है उसी में जादू है। फिर संदेशी मुकरर उसके पन्ने, उससे पहले कि इस निमित्त कौन बनेगा, तो दीदी निमित्त बनेगी, साथ में कुमार का मददगार होगी, तो ये उसके बाद में ये दोनों फिर डिसाइड करेगी, क्या संदेशिया को मुकरर करेगी कौन से संदेश लाने हैं। फिर उसके बाद में मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए आना है, मधुबन में क्यों आना है, सेंटरों की जो समस्या है, सेंटरों की जो उन्नति है, सेंटरों की जो रिजल्ट है वो सुनाने के लिए यहां आना पड़ेगा, और यहां से रिफ्रेश होकर जाना पड़ेगा जाएंगे। हाँ, और जरूरत पड़ी तो ये दोनों भी चक्कर लगाएगी सेंटरों के। और डायरेक्शंस भटिया, ये सेल कॉल अभी बंद हो जाएगा, बाबा ने कहा, उसके बाद ये दोनों डिसाइड करेगी, ये जो है ना इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये भी कहा है उसने, अभी अब तक तो स्थिति के ऊपर अटेंशन। और अव्यक्त पाठ चालू हो रहा है, पढ़ाई वैसी ही चालू रहेगी, क्योंकि प्रश्न क्यों है बाबा ने उसमें पूछा, जबकि पढ़ाई अविनाशी है और खजाने अविनाशी है, पढ़ाई अविनाशी है खजाने अविनाशी है, फिर भी इतनी हलचल क्यों? फिर हलचल का मंथन नहीं करना है, विचार सागर मंथन करना है, हलचल का मंथन नहीं करो। बाबा अभी रिटायर होता है फिर भी मिलने आते रहेंगे, बच्चे बड़े होते तो बाबा रिटायर होते हैं, ये भी एक कारण है। हाँ, साकार की सारी मूल्यां रिवाइज होगी, और फिर ब्रह्मा के बारे में दुनिया वाले पूछते हैं कि ब्रह्मा के 100 वर्ष तो कैसे, ब्रह्मा तो पहले ही चला गया, तो क्या उत्तर देंगे? लगभग बाबा ने कोई खास उत्तर दिया नहीं, इसने कहा कि लगभग 100 ही वर्ष तो हो गए थे वैसे भी। हाँ नहीं, वो आगे है, हम पहले मुख्य डायरेक्शंस क्या क्या दिए, वो तो मुरली बहुत बड़ी है, बहुत सारी बातें है उसमें, और डायरेक्शंस में यज्ञ के लिए डायरेक्शन, पोस्ट हो गया, लिखा पड़ी, एक जगह पोस्ट शब्द है, एक जगह लिखा पड़ी शब्द है, जो मधुबन से जाएगी सेवा केंद्रों पर जाएंगी। हाँ वो आगे जो दो बातें हैं उसमें कही है वो बात कि दो बातों की सौगात बाप को देनी है। पहली बात है किसी के अवगुण न देखना न सुनना न चित्त पर रखना। अगर देखने में आती है तो बड़ों को बताना, वो इशारा देंगे उस अनुसार करना। दूसरी बात है हलचल में नहीं आना, डगमग नहीं होना। दुनिया वाले तुम्हारे निश्चय हिलाने का प्रयत्न करेंगे, कहेंगे कैसे चलती है अब इनकी संस्था देखते हैं। हाँ वो चैलेंज करेंगे, तो उस समय हलचल में नहीं आना है, डगमग नहीं होना है, ये एक डायरेक्शन। तो ये दो सौगात बाप को देनी है। और निश्चय के बारे में फिर कहा है कि निश्चय तो तभी पता चलता है ना जब विघ्न हो, परीक्षाएं हो। तो मम्मा भी क्या कहती थी, तीन चीजों में निश्चय नहीं होना चाहिए, बाकी सब में तीन चीजों का निश्चय है। तीन चीजों का जो आधार है वो कभी भी छोड़ना नहीं है। कौन कौन सा? एक तो बाबा पर निश्चय, दूसरा संगठन पर निश्चय, और तीसरा परिवार के नियम। परिवार के नियम, संगठन और बाबा, ये तीन निश्चय नहीं छोड़ने हैं। अच्छा, उसके बाद में तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या कहा? तीव्र पुरुषार्थ किसे कहेंगे? नहीं, वो इस मुरली में नहीं है। समय पर याद आ जाना, ये बातें, ये ज्ञान समय पर याद आ जाना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। फिर ब्रह्मा के वो प्यार अर्थात कि आंसू बहाना अर्थात ब्रह्मा के लिए प्यार, फिर कौन सा प्यार? उस सर्विस और आज्ञा, ये दो चीजें हैं। सर्विस और आज्ञा, ये ब्रह्मा बाबा को सर्विस से प्यार था, आज्ञाओं से प्यार, तो उसके जैसा सर्विस से प्यार और आज्ञाओं से प्यार, ये है अर्थात इसको क्या कहेंगे, बाप से प्यार। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसू बहार है, तो ये और एक एक डायरेक्शन था। और हाँ एक जगह कहा है आपका प्यार है, और यज्ञ के लिए और कोई डायरेक्शन? ये देखो ये पार्ट कैसे बदल रहा है। फर्स्ट मुरली है 21 जनवरी, उसमें बाबा ने इतनी सारी नई नई बातें बता दी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले तो ये किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। बहुत टर्निंग प्वाइंट है यज्ञ का। 21 जनवरी मुरली अर्थात टर्निंग प्वाइंट, फर्स्ट अव्यक्त वाणी, और उसमें जो बातें हैं, और वो भी एक दूसरे माध्यम द्वारा। यहाँ पर आवाज भी दादी का अव्यक्त आवाज होगा जो किसी को पहले सुनने की आदत नहीं होगी, पता भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। हाँ किसी को कुछ पता नहीं था, और उसमें भगवान की प्रवेशता और इतने सारे अलग अलग भिन्न भिन्न डायरेक्शन। फिर ब्रह्मा को किसने पहचाना? ब्रह्मा की स्थिति का भी वर्णन है, पिछले दो तीन मास से ब्रह्मा के साथ क्या हो रहा था। चमकता हुआ सितारा किसी को देखा होगा, पहले तो कुछ समय पहले नोट करते थे, बातें सुनते थे, अभी तो अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त रूपधारी स्थिति में थे, और जो अव्यक्त स्थिति में हो गए उन्होंने ही ब्रह्मा को पहचाना। पहले सुनते थे, अभी नहीं सुनते, सुना अनसुना करते थे। तो ब्रह्मा बाबा की जो तपस्या है पिछले कुछ मास की 18 जनवरी की, एकदम उपराम वाली अवस्था है, निरंतर याद, उपराम अवस्था, साक्षी भाव, जैसे करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। जैसे बाबा के एक महावाक्य, मैं इस तन में ऐसा रहता हूं कि जैसे इस यहां पर नहीं हूं। सभी बच्चों ने ये महावाक्य सुने, मैं इस तन में ऐसे रहता हूं जैसे मैं यहां नहीं हूं। लोगों को लगा ये शिव बाबा कह रहे, परंतु ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी, ये शिव बाबा नहीं कह रहे थे। वैसे देखा जाए तो ये शिव बाबा ही कहता है कि मैं इसके तन में ऐसा हूं जैसे नहीं हूं, परंतु ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी कि वो कह रहे थे कि मैं इस तन में ऐसा हूं जैसे यहां नहीं हूं। तो ऐसी अव्यक्त स्थिति, ऐसी संसार की विस्मृति, देह की भी विस्मृति, देह से तदात्म्य इतना कम रह गया, जैसे अभी अभी गया अभी है नहीं। जो भक्ति में कहते हैं समाधि, समाधि और मृत्यु में ज्यादा अंतर नहीं है। मृत्यु में देह से संबंध छूट जाता है, परंतु वहां बेहोशी की अवस्था है, यहां परम होश की अवस्था है। देह से संबंध छूटा हुआ है परंतु परम होश, परम होश है, अंदर में जागृति है, परंतु देह का कोई भान नहीं, देह की कोई शुद्ध नहीं। वो स्थिति में बाबा निद्रा जीत की अवस्था तक चले गए थे। योगी की जो नींद होती है बहुत कम होती है। योगी धीरे धीरे सबको जीतते जाता है, प्रकृति को जीतता है पहले, फिर भोजन को जीतता है, फिर धीरे धीरे नींद को भी जीतने लगता है। उसको थोड़ा सा सो गया बस, यहां तक कि भारत के प्रधान राष्ट्र आज नरेंद्र मोदी सुबह 5 बजे से दिनचर्या चालू होती है। 5 बजे उठते हैं, चाय, योगासन, प्राणायाम, फिर उनका जो कार्योभार है सारा, दिन में नहीं सोते, दिन में नहीं सोते। और रात में लगभग 11:30 और 12:30 बजे टोटल नींद जो है वो 3.5 घंटा या 4 घंटा। और 4 घंटे के बाद उन्होंने अपना अनुभव एक बार कहीं तो है लिखा हुआ या बताया है खुद, सोते 30 सेकंड में नींद आ जाती है और 4 घंटे के बाद उठते हैं सीधा एकदम तरोताजा। क्यों? क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा करना है, कैसे सोएंगे आदमी, इतनी सारी हर चीज की चिंता है, ये भी करना है, वो भी करना है। और हमारा सोने का पीरियड कम होता है तो हम बहुत सारी चीजें, हमारी जो पेंडिंग रहती है वो हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। सोना एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो तमोगुणी अवस्था है एक रीति से, वो दूसरी बात है। सोने के क्या फायदे हैं, सोना जरूरी है, दैट इज देयर, वो तो है। परंतु हम अगर योगी जीवन में अगर उतरते हैं तो योगी का शरीर वैसे कार्य नहीं करता है जैसे संसार के लोगों का शरीर कार्य करता है। वो तो संसार वाले कहते हैं 9 घंटा तो नींद करो, कोई कहते हैं 8 घंटा करो, कोई कहते हैं 7 घंटा बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं करोगे। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है एक इंटरव्यू में, सारे डॉक्टर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि नींद बढ़ाओ, नींद बढ़ाओ, नींद बढ़ाओ। पर मैं कहता हूं मुझे कोई समस्या ही नहीं है, मैं एकदम फ्रेश हूं, एक ही दिन में 4 जगह घूम के आता हूं, 4 अलग अलग जगह पर, फिर भी मैं अभी बैठा हूं एकदम फ्रेश। ये एनर्जी कौन सी है? योगी निद्राजीत होता है धीरे धीरे। ये तो देखो, ये तो फिर भी संसारिक व्यक्ति है, उसे परमात्मा परिचय नहीं है पूरा। वो उठते ही उसकी दिनचर्या न्यूज और इस सब से चालू होती है, उसने खुद कहा है, क्योंकि मोटिवेशन है अंदर, ऐसा इंस्पिरेशन है अंदर कि मुझे ये करना है, ये करना है। अगर वो कहता है कि मैं दोपहर में 2 घंटा सो जाऊं, वो 2 घंटे में मैं कितने दूसरे काम कर सकता हूं। तो योगी का शरीर वैसा कार्य नहीं करता जैसे संसार के लोगों का शरीर कार्य करता है। धीरे धीरे योगी की नींद भी कम होती जाती है परंतु एनर्जी लेवल वही, और वो नींद भी इतनी रिफ्रेशिंग होती है, रिफ्रेशिंग। इसके लिए ब्रह्मा बाबा की अंतिम अवस्था में कोई अगर दरवाजा खोल दे तो क्या है, क्या है बच्चे, मतलब जैसे सोए नहीं थे। हाँ आओ बच्चे, मतलब जैसे ये आदमी सोया कि नहीं सोया, ये कौन सी अवस्था है? ये परम होश और परम जागरण की अवस्था है, एब्सोल्यूट अवेयरनेस। अवेयरनेस इस ऊंची अवस्था तक पहुंच गई है कि जिसमें वो नींद किस लिए की जाती है? रिफ्रेश होने के लिए। अगर वही रिफ्रेशमेंट कोई और चीज से मिल जाए तो फिर उसकी भी आवश्यकता नहीं। तो हाँ, करते ही रहते। इसका मतलब, इसका संबंध शरीर से कम मन से ज्यादा है। जब कोई व्यक्ति, अरे चलो हमारी बात छोड़ दो, बाबा उदाहरण देते हैं साहूकार लोगों का, दुकानदार का, रात भर अगर कोई वो फेस्टिवल है, रात भर जागते वो लोग, नींद फिट जाती है कैसे? इसका मतलब इसका संबंध शरीर से कम मन से है। सब कुछ मन है, हमने हमारे मन को ऐसी आदतें डाल दी, ऐसे ट्रैक पर डाल दिया, ऐसे पैटर्न तैयार कर दिए कि हमने सोच लिया कि हमको 8 घंटा चाहिए, और थोड़ा भी 1 घंटा इधर उधर हो गया तो चिड़चिड़ापन। अगर कोई व्यक्ति निमित्त बना वो करने के तो उसको तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, हमारी ब्राह्मणों को सबसे प्रिय 2 चीजें हैं, नींद और भोजन। अगर जो व्यक्ति इसमें खलल डालता है ये 2 चीजों में, वो उसको माफ तो ब्राह्मण कम ही करते हैं थोड़ा। मोदक रोचंती, तो ब्राह्मण को मोदक बहुत अच्छे लगते हैं। ब्राह्मणों का पेट देखा ना द्वापर युग से कैसे बड़ा दिखाते हैं, सबकी नियम, सारे नियम मर्यादाएं सारी रस्म रिवाज यही अगले संडे की मुरली में एक वाक्य है, सही यहीं पे डाले जाते हैं सभी। ब्राह्मण द्वापर में इतना बड़ा पेट भोजन करने जाते हैं और साथ में लेकर भी जाते हैं घर पे, यहाँ पर भी तो भोग लेके जाते हैं अपने अपने घरों में, कोई कोई कमरे में जिलेबी बनती है तो दो तीन तो लेके जाते हैं, अगर मिल गई तो अच्छा ही है, दो तीन अगर मिल जाए शाम के लिए कल के लिए। नींद में की है तो शुरुआत धीरे धीरे अगर देखा जाए, बहुत सूक्ष्म है ये सारी चीजें, वहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले निगेटिव से मुक्ति, धीरे धीरे व्यर्थ नहीं, सबसे पहले काम विकार से मुक्ति, अगर लैडर अगर बनाया जाए सबसे पहले काम से मुक्ति। एक तो जो व्यक्ति काम विकार में डूबा हुआ है वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, पहले पहले आत्मा काम को जीतती है धीरे धीरे। पांच विकार, क्रोध छूटा, लोभ छूटा, मोह छूटा, वो सारा छूटा, फिर धीरे धीरे व्यर्थ छूटा, निगेटिव छूटा, फिर धीरे धीरे भोजन तक पहुंचती है। डायरेक्ट अगर आगे जाने की कोशिश की हो तो धड़ाम से नीचे गिरो। सीधा सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, सीधा 99 से जीरो। इसके लिए डायरेक्ट जंप नहीं करना है किधर भी, धीरे 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 धीरे। फिर निद्रा, निद्रा को जीतना, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा हुआ है, गुड़ाकेश अर्थात कॉन्करर ऑफ स्लीप, जिसने निद्रा को जीता है। नींद को जीतना अर्थात बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, हमारे पास समय बच जाता है, समय ज्यादा हो जाता है। अभी जितना समय है सेवा करने का, सेवाओं का समय हमारे पास ज्यादा आ जाएगा, एक योग का समय ज्यादा आ जाएगा, चिंतन का समय आ जाएगा। चलो सेवा नहीं, योग नहीं, पर चिंतन तो हो ही सकता है। जो चिंतन सुबह करते हो और रात को करते हो, जो चिंतन सुबह अमृत वेले की बात करते हो और शाम को करते हो, वो दोपहर में भी हो सकता है अगर नींद को जीत लिया जाए तो। टैबलेट है मन मन अभाव। इसके लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, संकल्प, संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प अगर हो कुछ भी किया जा सकता है। ये शरीर तुम्हारी आज्ञा मानेगा, इस शरीर का मैं मालिक हूं, ये स्वमान कितना सुंदर है, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, ये देह वही करेगा जो मैं चाहूंगा। तिब्बत में हीट योग होता है, तिब्बत कंट्री, वहां पर हीट योग। हीट योग में क्या करते, जो सन्यासी होते हैं वो नग्न हो जाते हैं और बर्फ पर सोते हैं और अपने आप को संकल्प देते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है और उनको पसीना आता है। ये कैसे हो रहा है? जो संकल्प हम करेंगे वैसा ब्रेन कार्य करता है। हिप्नोसिस क्या है, सम्मोहन क्या है? सम्मोहन में कहा जाता है कि तुम्हारी पीठ पर खुजली हो रही है, उसको खुजली करने लगता है। सम्मोहन में कहा जाता है कि उसको पहले तो कॉन्शियस माइंड को शांत कर देते, सीधा सबकॉन्शियस माइंड को सारे संकल्प दिए जाते हैं, उसको कहते हैं तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, तो अपनी नाक को पकड़ लेता है, जबकि कुछ नहीं। तो ऐसा सब होता है, माइंड जो है ना एक अलग रीति से कार्य करता है। इसके लिए माइंड को हम जो कहेंगे वो करेगा। इसके लिए सारा जो है ना संकल्प जो है, सब होते जाते हैं। संकल्प सिद्ध होना, तो ये सारा जो है ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम कर रहा है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम क्या कहता है, जो हम संकल्प करते हैं इस सृष्टि में ऐसे वैसे सिमिलर संकल्प है, हम जो संकल्प करते हैं वो उस संकल्प को अट्रैक्ट करता है। हम ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी गई अभी दूसरी आई, अभी वो थी अभी ये आई, बीमारी 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 बीमारी, जो ऐसे सोचता है उसको और ज्यादा बीमारी आती। जो ये सोचता है मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। हमारे पास एक पेशेंट आता था, उसका पहले बेटा एडमिट हुआ, बेटा ठीक हुआ, बेटी एडमिट हुई, बेटी ठीक हुई, पत्नी एडमिट हुई, वो ठीक हुई, अभी खुद एडमिट होने आया, और हमेशा रोना उसका चालू रहता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और इतनी बीमारी है, पैसे नहीं है, बीमारी है, पैसे नहीं, बीमारी है, और ही पैसे कम और ही ज्यादा बीमारी। संकल्प, क्या हम संकल्प कर रहे हैं, जो हम संकल्प करेंगे उसमें कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन तो जो संकल्प हम करते हैं वो धीरे धीरे सिद्ध होने लगते हैं। कब? जब माइंड की प्यूरिटी पावर बढ़ने लगती है। प्यूरिटी जितनी ज्यादा बढ़ने लगती है उतनी एकाग्रता आने लगती है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल, स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। जितना वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उतना ही कंट्रोल करने के लिए आसान होगा। लास्ट संडे की मुरली संकल्प शक्ति के लिए बाबा ने तीन शब्द कहे थे, निस्वार्थ, स्पष्ट और स्वच्छ। ऐसे जब संकल्प होंगे तो सिद्धि को प्राप्त होंगे। हमारे संकल्प में कितना स्वार्थ है, कितने वो निस्वार्थ है, इस पर डिपेंड करता है वो सिद्ध होगा या ना। तो जो भी संकल्प करे, जी आइलैंड की तरह, सोलोमन आइलैंड था ना, वहां पे वहां के जो लोग होते हैं, जब उनको कोई झाड़ तोड़ना होता है या काटना होता है और झाड़ टूटता नहीं है, तो वो सारे गांव वाले वहां पर एकत्र हो जाते हैं और झाड़ को बहुत गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं 30 दिन तक डेली करते हैं वो, सूख जा सूख जा सूख जा सूख जा, गिर जा गिर जा गिर जा, और एक दिन वो झाड़ गिर जाता है। तो संकल्पों में ट्रिमेंडस एनर्जी है, बहुत जबरदस्त शक्ति है। और हम अपने देह को क्या, किसी को भी हम संकल्प से कंट्रोल कर सकते, इतनी पावर उसमें। कई लोगों ने, स्वामी ब्रह्मदत्त करके एक स्वामी थे, उनकी ऐसी सिद्धि थी कि वो उनकी नस कट कर दो तो खून नहीं निकलता था, रोक देते थे खून को। अब उसमें पावर ऐसी थी कि वो ऑर्डर करते थे कि खून नहीं निकलेगा तो खून रुक जाता था। ऐसे कई सारे योगी हुए हैं, योगियों में तो ये सिद्धियां बहुत होती है। वो सिद्धि सारी, उसका अध्यात्म से भी बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, ये साइकिक पावर्स है। ये तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, वो भी इसको करते हैं, इतनी पावर है संकल्प में। हाँ, वो भी एक है इसी में, तभी बताया था एक बार जी। हाँ, आप इसमें विनाश भी हो सकता है। संकल्प शक्ति जो सिद्धियां होती है, शास्त्रों में कहा ये सिद्धि बाधा है अध्यात्म में। ये सारी सिद्धियां उत्पन्न, पर सिद्धियां आने के बाद व्यक्ति को क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है, प्रसिद्धि, नाम होता है, और ये नाम मानी शान गिरा देता है उसको। इसके लिए अभी हमारी दादिया 80-80 साल की योगी है, इतना प्योर जीवन है। अगर वो चाहे तो अगर संकल्प कर दे और ऑर्डर कर दे तो हो सकेगा, पर वो नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि वो अगर करे तो उनको बहुत फॉलो करने वाले और उससे डिससर्विस भी हो सकती है। हाँ, मतलब अगर पवित्र आत्मा ये संकल्प कर दे कि आसमान को कह दे कि बारिश हो, तो वो हो जाएगी। इतनी प्रकृति जीत की पावर होती है। प्रोग्राम में ये बहुत बार हमने, हमारे प्रोग्राम में कितनी बार हुआ है। संकल्प में इतनी जबरदस्त एनर्जी है, इतनी जबरदस्त ऊर्जा है। हमें खाली अपने संकल्पों को बचाना है, बढ़ाना है, एकाग्र करना है, अटेंशन देना है, प्रयोग करना है और जानना है क्या संकल्प है, उसकी एनर्जी को बढ़ाना है, कैसे वो कार्य करते देखना है। एक ही संकल्प होता है कोई भी, यहां जो भी आ गए बस एक संकल्प से आ गए, यहां आना है बस आ गए, कितनी बाधाएं आ गई जीवन में, सब तोड़ दी और पहुंच गए। संकल्प ही तो था एक, चाणक्य का एक ही तो संकल्प था, इस धननंद को उखाड़ के फेंक दूंगा, सारे नंदों को उखाड़ कर फेंक दिया, ये एक संकल्प ही था। बड़े बड़े कार्य जिन्होंने भी किए हैं विश्व में, विश्व भर में, एक संकल्प ही था वो। ओनली वन थॉट दैट बिकम्स एनर्जी, थॉट्स आर थिंग्स, थॉट जो है ना वस्तु है, ऐसे कहा जाता है। दे हैव विंग्स, वो उड़ सकते हैं, वस्तु जैसे है विचार, विचार वस्तु है, जो हम चाहे उसके साथ कर सकते हैं। तो अभ्यास करना है थॉट्स को एकाग्र करने का। चलो फिर से मुरली पे आते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ की बात हो गई, यज्ञ के लिए डायरेक्शंस हो गए, फिर मम्मा ने निश्चय बुद्धि के लिए क्या क्या कहा वो हो गया। दो बातें दान करना है, ब्रह्मा बाप से प्यार, किस बात का मंथन, अंतिम में ब्रह्मा की स्थिति, 100 वर्ष का गायन, लगभग सारे पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट याद है किसी को 21 जनवरी की मुरली से? कोई पॉइंट? सारे हो गए। हाँ, हाथ साथ नहीं छूटा, वो भी है। फिर तुमने पहले निश्चय पत्र लिख के दिया था कि ब्रह्मा भी चला जाए तो भी हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाएंगे, सब आधार छूटने हैं। वो संदेश है, ये 21 जनवरी की मुरली है, वो 12 संदेश में का शायद तीसरा संदेश है। नारा प्रसिद्ध होगा। हाँ, गीत हो गया तो सुना दो। नहीं, इसमें सुना।
संदेश पढ़ लिया तो थोड़ा थोड़ा लिखा है। प्रथम मिलन की वो अव्यक्त दिवस भुलाए नहीं भूल पाती है, चलकर मधुशाला सागर सी जब पैमानों तक आ जाती है। याद प्यार की रस्सी में जब नियता भी बंद आ याद प्यार की रस्सी में जब नियता भी बंद आता है, ऐसे मीठे बंधन से फिर भाग्य विधाता भी दूर न रह पाता है। मतलब जब बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को भी आना ही पड़ता है। मैंने कविता की उसमें लिखा है, सूर्य अनोखा, चांद अनोखा और अनोखे ये सितारे हैं। मतलब बाबा भी बैठे थे, ब्रह्मा बाबा भी सटल में थे और हम सब भी थे। तो सूर्य अनोखा, चांद अनोखा और अनोखे ये सितारे हैं, एक अनोखे काल की वेला पर देखो कैसे चमके ये सारे हैं। मतलब एकदम टर्निंग प्वाइंट था। तो भारी अमावस की रात में ये चांदनी अनोखी छा जाती है, चलकर मधुरशाला सागर सी जब पैमानों तक आ जाती है। आज विचित्र का चित्र ये कैसा, मतलब बाबा ने कैसा एकदम पलट के दिखाया। तो आज विचित्र का चित्र ये कैसा, जब सागर खुद रोना चाहता है, अपने ज्ञान की हर एक बूंद को प्यार में खोना चाहता है। मतलब बाबा को भी इतना, बाबा ने जो वो शब्द बोले थे कि मैं नहीं प्यार करता क्या, तो मतलब बाबा सब कुछ दिखाना चाहता था कि मेरे में बस कितना है। तो अपने ज्ञान की हर एक बूंद को प्यार में खोना चाहता है। कर्म संकल्प सेवा की ये अखंडता, बाबा ने जो सेवा के लिए बोला था, कर्म संकल्प सेवा की अखंडता एक नया इतिहास बनाती है, चलकर मधुशाला सागर सी जब पैमानों तक आ जाती है। तो मतलब खुद जो मैखाना है, मतलब पूरी शराब की बोतल गिलास तक खुद, जैसे हमें अगर शराब जाना हो, हमें पानी पीने जाना हो तो कुएं तक जाना हो पड़ता है, लेकिन कुआं चल के पैमानों तक आ रहा है, मतलब हम तक आ रहा है ऐसे। रह व्यक्त स्थिति में अब अव्यक्त स्थिति को संजोना है, बाबा ने जो मुरली में बताया था। रह व्यक्त स्थिति में अब अव्यक्त स्थिति को संजोना है, न आ पाए उलझन कोई भी, यह तो माया का खिलौना है। दिया आधार बाबा संगठन और परिवार के नियमों का, बनते गले का हार वो जो है अटूट निश्चय बुद्धि सा। वो दिन आज आ ही गया जब हुए श्रृंगार से आंख भर जाती है। बाबा ने इतने श्रृंगार के, बाबा ने कहा ना कितने श्रृंगारों से सजाया था, तो आज उसका रिटर्न देने का था। तो वो दिन आज आ ही गया जब हुए श्रृंगार से आंख भर आती है, चलकर मधुशाला सागर से जब पैमानों तक आ जाती है। दिन वो अंत के भी याद हैं जब मस्तक में सितारा चमक आता था। दिन वो अंत के भी याद हैं जब मस्तक में सितारा चमक आता था। रह अव्यक्त स्थिति में कुछ ने उसे अव्यक्त मूर्त को जाना था। उसी सितारे की चमक से आंखें उठकर सजल हो जाती है। मतलब ऊपर की तरफ जब देखते हैं बाबा की तरफ तो आंखें भर आती हैं। चलकर मधुशाला सागर से जब पैमानों तक आ जाती है। हलचल का सागर ले मन में, पेपर कुछ ने पास किया, बाबा ने कहा था कि ये पहला पेपर था तो कुछ ही नहीं पास किया। हलचल का सागर ले मन में, पेपर कुछ ने पास किया, अविनाशी बाप की अविनाशी पढ़ाई पर सकुचाए पर विश्वास किया। मतलब हलचल तो हुई तो विश्वास किया। उस हलचल को शांत करने माँ के हृदय की पाती आती है। मतलब ब्रह्मा बाबा तो नहीं आए थे, शिव बाबा आए थे, तो शिव बाबा बाबा के ब्रह्मा बाबा के भी बातें बता रहे थे। तो माँ के हृदय की पाती आती है, चलकर मधुशाला सागर सी जब पैमानों तक आ जाती। ओम शांति। ये पहला ही पेज था।